हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामात्ममायय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जीवात्मा भी अजन्मा है और अविनाशी है। तो भगवान में और जीवात्मा में अंतर यह है कि हम सब जीवात्मा हैं, अन्य जीवात्माओं के स्वामी नहीं हैं। तो न सिर्फ भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं, बल्कि सभी जीवात्माओं के स्वामी भी हैं। और दूसरा, जब जीवात्माएं बद्धात्माएं जगत में प्रकट होती हैं, तो अपने कर्म बंधन के अनुसार प्रकट होती हैं, कर्मों के फलों को भोगने के लिए प्रकट होती हैं। लेकिन भगवान को कोई भी इस प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है जब वो जगत में आते हैं। इससे पहले कि हम तात्पर्य में जाएं, एक सुंदर से उदाहरण के द्वारा अब इस बात को समझ सकते हैं। एक जेल के कैदी को, जिसने जो अपराधी होता है, उसको सरकार की गाड़ी में या पुलिस वालों के साथ में लाया जाता है जेल के अंदर। कभी कभी वो उसके अपराधों के कारण होता है, अपराधों के फल के कारण उसको ऐसा करा जाता है, और वो जेल में आने के लिए और बाहर जाने के लिए स्वराट नहीं होता, इंडिपेंडेंट, फ्री नहीं होता है। कभी कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपनी ही इच्छा से जेल में आते हैं, जेल की व्यवस्था को देखने के लिए कि क्या जेल ठीक से चल रही है। तो पहली बात क्या है, वो अपनी इच्छा से आते हैं, कोई अपराध के कारण नहीं आते। दूसरा, वो भी गवर्नमेंट की गाड़ी से आते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की गाड़ी उनकी खुद की होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के सरमौर हैं, इंचार्ज हैं। और वो भी पुलिस वालों के साथ में आते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, उनके सेवक होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई देखो, ये दोनों लोग तो पुलिस की गाड़ी में ही आ रहे हैं या पुलिस वालों के साथ आ रहे हैं, तो दोनों एक ही अवस्था में हैं, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान होगा। एक चीफ मिनिस्टर और एक अपराधी के जेल में आने में बहुत अंतर है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा से आता है। तो इस प्रकार से भगवान का यहाँ पे आना, उनका प्रकटीकरण है, वो जीवात्माओं के इस जगत में जन्म लेने से बहुत अंतर होता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, संभवामि आत्ममाया, मैं अपनी ही कृपा से इस जगत में प्रकट होता हूँ। और क्यों प्रकट होते हैं उसके बारे में भगवान आगे भी बताएंगे, लेकिन हमने आपको खाली प्रकट होने के प्रोसेस के बारे में बताया कि दोनों में अंतर क्या है। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती है। ये एक अद्भुत बात है कि भगवान ने को ये सब याद था कि उनने क्या बताया, कहाँ बताया, किसको बताया, ये भगवद गीता का ज्ञान लाखों साल पहले। और अगर हमसे पूछा जाए कि आप कल ये कुछ घंटे और मिनट पहले एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, तो हमारे लिए स्मरण करना बहुत मुश्किल है। और भगवान को सभी जीवात्माओं के हृदय में क्या चल रहा है, उनने क्या सोचा, हर क्षण क्या सोच रहे थे, क्या सोचेंगे, ये सब भगवान को पता है। तो इससे पहले कि हम किसी को भगवान घोषित करें, हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान क्या है। तब आप देख सकते हैं कि भगवान के जन्म में हमारे जन्म में कितना अंतर है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भ्रमित लोग इसलिए होते हैं कि लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान का मतलब क्या है। एक व्यक्ति मेरे सामने बैठे थे और वो केक खा रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि यदि मैं, जब उन्होंने प्रसाद ले लिया तो मैंने उनसे बोला कि क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप कुछ देर पहले क्या खा रहे थे तो आप क्या बताएंगे? तो उन्होंने बोला मैं केक खा रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप पराठा खा रहे थे। कहते नहीं, पराठा तो नहीं खा रहे थे, हम तो केक खा रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप पराठा खा रहे थे। कहते नहीं, हम तो केक खा रहे थे। तो मैं उनको बोला कि क्या आप ये बात स्वीकार करेंगे कि मैं एक साधु हूँ, तो अगर मैं केक को पराठा बोलूंगा तो आप मान जाएंगे? कहते नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बड़ा सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि केक क्या है और पराठा क्या है। उसी प्रकार से जब तक हम भगवद्गीता और भागवतम के शास्त्रों के द्वारा नहीं समझेंगे कि भगवान है कौन, तो किसी भी व्यक्ति को हम भगवान मान देते हैं। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है हमारे हृदय में, और इसको हमें भगवद्गीता को सुन करके समझना चाहिए। आप कहेंगे इतना कुछ सुनने की जरूरत क्या, कि क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के शाश्वत रूप को स्वीकार नहीं करता, ये स्वीकार नहीं करता कि भगवान का रूप आदि, जो आदि स्वरूप है वो शाश्वत है, वो भगवत धाम नहीं जा सकता, वो अपनी साधना की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि समझना चाहिए, भगवान जब आते हैं तो उनका जो स्वरूप है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल, चिन्मय, शाश्वत होता है। अब भगवान द्वारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे समान जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक श्लोक आता है, मन्यते आत्मवत जगत। बद्धात्मा होने के कारण हम अपने शरीर और अपने में भेद देखते हैं, या आर्टिस्ट हम लोग देखना चाहिए, लेकिन ये बात, ये धारणा हमको भगवान के ऊपर नहीं समझा रखनी चाहिए। भगवान में शरीर और शरीर का भेद नहीं है, देह देही विभेदोयम। तो इसलिए जब यहां शब्द शरीर का आ रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर है और भगवान उसके अंदर कोई आत्मा अलग से है। भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं होता, इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी। भगवान अद्वैत है, ठीक है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, यानी कि शरीर परिवर्तन करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। आद्य शरीर मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा की गई थी पिछले श्लोकों में। अनादि, भगवान की कोई शुरुआत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पूछे कि अगर भगवान सबकी शुरुआत है तो भगवान की शुरुआत क्या है, तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि कंसेप्चुअली और सिद्धांत के रूप में भगवान का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसका अर्थ यही है कि वो सभी के स्रोत हैं, जन्माद्य अस्यतः, और उनका स्रोत कोई नहीं है, और उसको हमको ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। तो यही चीज भगवान के नाम के ऊपर है। जब भगवान का नाम हमारी जीव पे आ रहा है तो हमको लगता है जैसे हम अन्य भौतिक शब्दों का उच्चारण करते हैं, ऐसे ही नामोच्चारण भी करने हैं। लेकिन वस्तुतः जब जीव भगवत कृपा से इच्छा करता है कि भगवान का नाम हमारी जीव पे आए, तो भगवान स्वयं ही अपनी शक्ति से हमारी जीव पे आते हैं। ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, और भगवान के नाम की ध्वनि को एक भौतिक ध्वनि मानना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है भगवान के नाम के प्रति। जैसे जब भगवान आते हैं उनको एक सामान्य व्यक्ति मानना एक अपराध है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे सामने वृद्ध नहीं होते, क्षमा कीजिएगा, हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। भगवान के अंदर बहुत सारी विरोधाभासों का सामंजस्य होता है। जैसे भगवान अद्वैत हैं, भगवान में परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी भगवान बड़े होते हैं, बड़े होते दिखते हैं। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण है कि सूर्य सुबह के समय लाल होता है, उसके बाद यह हमको लाल दिखता है, और अलग अलग उसमें रंग दिखाई पड़ते हैं, और दोपहर में पीला हो जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि सूर्य का जो रंग है वो पीला ही है। ऐसे ही भगवान के अनंत रूप हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि वो रूप जो हैं वो काल्पनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें खाली प्रतीत हो रहा है अलग अलग रूप है। भगवान का बाल रूप जो है वो भी शाश्वत है, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति से भगवान बड़े होते हैं। और हम बड़े होने का शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी भौतिक धारणा है, लेकिन फिर भी भगवान में परिवर्तन नहीं होता। और जब भगवान बच्चे के रूप में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर शक्ति कम है। जब भगवान अपनी माँ के गर्भ में थे, तब भी सारे बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा, शिव इत्यादि आकर के उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में है, वो तो बड़ी कठिन परिस्थिति में होता है, तो खुद माँ के गर्भ की शरण में होता है, तो दूसरा लोग आकर उनकी शरण क्या ले सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भगवान सूर्य वाला धारण ने, सूर्य हक का टेम्परेचर हमेशा एक ही स्थिति पर रहता है। ऐसे भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो, उनका जो स्थिति है वो हमेशा दिव्य रहती है, ये समझना चाहिए। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है, वेद्यम वास्तवम वास्तवम अत्र वस्तु। ये जो हमारे भगवान हैं, इन्हें परम सत्य बोला जाता है। सत्य का अर्थ है जो भूत, वर्तमान और भविष्य में परिवर्तित नहीं होता। तो आत्मा भी सत्य है, लेकिन भगवान परम सत्य है, क्योंकि बाकी जितने भी सत्य हैं वो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में नहीं थे, नहीं है, या भविष्य काल में नहीं रहेंगे। कि कुछ लोग बोलते हैं कि इस समय भगवान नहीं है क्योंकि इतना पाप हो रहा है, ऐसा करके उनके मन में धारणा आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हर परिस्थिति में रहते हैं, हर समय में रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये बहुत ही गहरी बात है, कि इस जगत में जो भी हमारे संबंध हैं वो समय के द्वारा परिच्छिन्न हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। इस जन्म में जो हमारे पिता हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद वो हमारे पिता नहीं रह जाते, कोई और संबंध हो जाता है। लेकिन एक बार हम अपने कृष्ण से अपने भूले हुए संबंध को जागृत कर लेते हैं, तो फिर कभी भी कोई संबंध का विच्छेद नहीं होता। कितनी सुंदर बात है। और इसकी शुरुआत होती है साधना भक्ति के द्वारा। साधना भक्ति के द्वारा हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तो इससे बड़ा सुंदर बात यह आ रही है कि कितना भी समय लगे, यदि हम अपने संबंध को भगवान से दोबारा स्थापित कर लेते हैं, तो ये संबंध विच्छेद का जो दुख है वो कभी सहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमेशा रहने वाले हैं और हम भी हमेशा रहते हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है, ये बदलती है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जगत में जो भी भौतिक हमारे पास है, एक दिन वो सब कुछ छीन लिया जाएगा, चाहे हमारी सुंदरता हो, चाहे हमारी शक्ति हो, चाहे हमारे बल हो, सब कुछ छीन लिया जाएगा। लेकिन भगवान के संग ऐसा कभी भी नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरुभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है, तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं, और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंग शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। एक बहुत सुंदर बात इस संबंध में हमें को आ रही है समझ के, कि भले ही हम भगवान को अपनी इंद्रियों से अनुभव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानने का प्रयास हम केवल अपनी अपूर्ण इंद्रियों से नहीं करते हैं, अपितु जो हम शास्त्र के वचनों को सुनते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान को हम धारण करते हैं। जैसे भले ही लगे कि भगवान एक छोटे बच्चे के रूप में हैं या युद्ध कर रहे हैं या राजनीति में भाग ले रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर हम समझते हैं कि वो पूरी तरह से इन चीज़ों से निष्कलुषित हैं, निर्लिप्त हैं। अगर कोई भगवद गीता को नहीं समझता है, सिद्धांत को नहीं समझता है, तो भगवान की लीलाओं को ठीक प्रकार से समझना असंभव है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोलते थे कि भगवद गीता को हमें ठीक से समझना चाहिए, तब हम भागवतम को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं एक सामान्य व्यक्ति की लीलाएं के रूप में लगेंगी। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जगत में हर व्यक्ति किसी सिद्धांत को या कंसेप्ट को अपनी मनोवृत्ति के अनुसार समझता है, अपनी मानसिक धारणा के अनुसार समझता है। तो जब हम सुनेंगे कि भगवान गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि जिस प्रकार से भौतिक जगत में एक बद्धात्मा किसी स्त्री का संग करता है काम के आधार पर, उसी प्रकार से भगवान कर रहे हैं। और प्राय इस तरह से लोग भगवान कृष्ण पर आक्षेप करते हैं कि वो तो बहुत कामी पुरुष थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले भगवद गीता के द्वारा हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान की स्थिति क्या है, फिर हम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं ठीक प्रकार से। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारा शरीर हमारी शक्ति के बिना परिवर्तित हो रहा है, लेकिन भगवान अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, बाल रूप को, पौगंड रूप को, इस प्रकार से। श्रीमद् भागवत में वे अपने माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं तथा षड ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान की यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब कोई व्यक्ति सुनता है कि भगवान सब जगह हैं, तो अब वो अपनी भौतिक धारणा उसमें लगाने लगता है। वो सोचता है कि जैसे हवा और रोशनी सब जगह व्याप्त होती है, तो हवा का कोई रूप नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर भगवान सब जगह व्याप्त हैं, तो भगवान का रूप नहीं होना चाहिए। यही बात मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि इसे कहते हैं मन्यते आत्मवत जगत। अपनी धारणा के अनुसार व्यक्ति उन चीजों पे, अपनी धारणा को उन चीजों पे थोपने लगता है जो उसकी धारणा की शक्ति या किसी मनोकल्पना की शक्ति से बाहर है। श्रीला प्रभुपाद जिसको हमेशा समझाया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र से नहीं सुनता है, भगवद गीता आदि से नहीं सुनता है, तो स्वभावतः ये बात मन में आती है कि इतनी बड़ी शक्ति की संरचना कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, तो निश्चित रूप से जो परम सत्य है वो निराकार होगा। लेकिन जब हम भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुनते हैं, तब हम समझते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। उसमें हम भौतिक धारणा, भौतिक लॉजिक, भौतिक सिद्धांत नहीं लगा सकते। भगवान सब जगह होते हुए भी गोलोक में रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। बावजूद इसके कि भगवान हर अणु में, परमाणु में व्याप्त है, फिर भी भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं। तो ये एक अद्भुत भगवान का वैभव है जिसे मानना चाहिए। तो भगवान इस धारणा को काटने के लिए कि भगवान निराकार हैं, स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे सूर्य की बारे में कोई व्यक्ति ना समझे, कभी सूर्य देखा नहीं हो, तो कल्पना कर सकता है कि, और उसे बोला भी जाए अगर कि एक ही बल्ब से, एक सूर्य एक बल्ब के समान है या अग्नि के पिंड के समान है जिससे पूरा जगत आलोकित हो जाता है। तो जिसने कभी सूर्य को देखा नहीं है तो वो धारणा ही नहीं कर सकता है कि सूर्य होता क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं परवर्टेड कॉग्निशन, यानी ज्ञान प्राप्ति का साधन या ज्ञान का जो उल्टा दृष्टिकोण है इसको बोला जाता है। तो कुछ कल्पना जरूर कर सकता है लेकिन जब सूर्य उदित होगा तो अपने आप समझ पाएगा कि वो ओह ये सूर्य होता है, ऐसा होता है। इसी प्रकार से भगवान, भक्त लोग सोचते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। तो इस समय हमारा हृदय अंधकार में है। जब हम भगवान नाम करते रहेंगे तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का नाम हमारे हृदय में सूर्य की तरह उदित होता है और उनकी अहेतु की कृपा से भगवान नाम के रूप में जब हमारे हृदय में प्रकट होते चले जाएंगे तो हमारे हृदय को आलोकित कर देंगे और अपने आप हमारे हृदय में हम समझ पाएंगे किस प्रकार से भगवान का नाम रूप इत्यादि सब भगवान से भिन्न है। तो उसका मुख्य तरीका है श्रवण, भगवान के नाम उच्चारण करना, श्रवण करना और भगवद गीता भागवतम को समझना, इसके द्वारा हम समझ पाएंगे। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरुभावों के अवगत से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देख ही रहे हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे। जैसे मेरा जन्म 1982 में हुआ तो 1981 में मैं कहाँ था, 1975 में मैं कहाँ था, इसकी कोई जानकारी मेरे को नहीं है। और जब इस जन्म में इस जन्म के शरीर को मैं त्याग दूंगा तो भी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये ऑब्वियसली बात है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से हमें कुछ सदगति प्राप्त होगी, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है हमारे पास, लेकिन भगवान को सब याद रहता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। और मान लीजिए हमें याद भी रहे तो भी ये गुण, हम इस गुण के द्वारा, ये जो गुण अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसके द्वारा भगवान और जीवों में अंतर हो जाता है। जैसे कि नारद मुनि को अपने पिछले जन्मों के बारे में याद है या पिछले जन्म के बारे में याद है जो पिछले कल्प में हुआ था, लेकिन फिर भी वो सभी जीवों के स्वामी नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि मुक्त अवस्था में भी कभी भी जीवात्मा अन्य जीवात्मा का स्वामी नहीं होता। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। भगवान मानव रूप में आते हैं, अपने मानव रूप को प्रकट करते हैं, मैं ये कहना चाहिए, लेकिन उनकी क्रियाएं मानवीय नहीं होती हैं, खाली मेल जोल होता है। हम में से कितने लोग हैं जो टेबल को भी अपनी बाएं उंगली पे धारण कर पाएंगे और बैलेंस कर लेंगे, लेकिन भगवान ने पूरे गिरिराज जी को उठा लिया। तो आप देख सकते हैं कि भले ही भगवान की लीलाएं ऐसा लगे कि मानवीय हैं, लेकिन एक्चुअली वो अति मानवीय हैं, समझना चाहिए। अतः भगवान निरंतर यही परम सत्य स्वरूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह अंतर नहीं होता, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि भगवान के रूप के से हम के पास हम आते हैं, समक्ष आते हैं, भगवान के रूप पर ध्यान करते हैं, भगवान का नाम का संपर्क करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं या भगवान के गुणों को सुनते हैं, तो एक्चुअली हम लोग भगवान के संग में आ रहे हैं। इस जगत में आम और आम के नाम में बहुत अंतर है। आम का नाम लेकर के आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन भगवान का नाम लेकर के हमारे सारे काम बिगड़ जाए, सारे काम ठीक हो जाएंगे, बल्कि हृदय का जो काम है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार भगवान का नाम जब हम ले रहे हैं तो हर बार हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, ये विश्वास होना चाहिए शास्त्र के आधार पर। अभिन्नत्वम नाम नामिनः, श्री प्रभुपाद जी संबंध में बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से जितनी बार हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं उतनी बार हम भगवान की तरफ क्रमशः बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भक्ति योग के माध्यम से हम बार बार भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इसके द्वारा हम साक्षात भगवान के संग में आ रहे हैं और इससे भगवान की कृपा से क्रमशः हमारे हृदय की अविद्या नष्ट होती जाती है। और जब अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी तब हम इस बात का अनुभव भी कर पाएंगे कि किस प्रकार से भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरुभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। एक चीज में और मैं पुनरावलोकन करूंगा कि भगवान आते क्यों हैं। जैसे एक छोटा बच्चा कभी नहीं समझ सकता उसके माता पिता कौन हैं जब तक उसके माता पिता उसको स्वयं न बताएं, उसी प्रकार से भगवान जब तक इस जगत में आकर के अपने गुणों के और स्वरूप के बारे में नहीं बताते हैं, तब तक बद्ध आत्माएं कभी नहीं समझ सकती। और जब तक वो भगवान के गुणों को नहीं समझेंगी, भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और जब तक भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इस जगत से मुक्त नहीं होते। तो इसलिए भगवान स्वयं आकर के अपने बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अहंकार वश ऐसा बोलते हैं। भगवान स्वयं आकर के बताते हैं, क्योंकि उनके अलावा उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो जब वो स्वयं आकर के बताते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो भगवान के आने का कारण के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।